वैदेही देव के साथ गांव के मेले में आई हुई थी। वो वहां पर राघवेंद्र की फैमिली से मिली। उनसे औपचारिक बातचीत करने के बाद वो दोनों मेले में से जल्दी जल्दी निकल रहे थे ताकि उन लोगों को वैदेही पर शक ना हो जाए। जल्दी जल्दी जाते हुए हड़बड़ाहट में वैदेही राघवेंद्र से टकरा गई। राघवेंद्र ने एक नज़र वैदेही की तरफ देखा और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, काय वहिनी, लगता है कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी लगी है। राघवेंद्र से टकराने की वजह से घबराहट के मारे वैदेही के दिल की धड़कन बढ़ गई। घबराहट के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। देव ने स्थिति को संभालते हुए बीच में बोला, भाऊ नाई वो क्या वो। राघवेंद्र ने उसकी बात बीच में काटकर बोला, तुम दोनों तो ऐसे जल्दी जल्दी चलकर जा रहे थे जैसे कोई चोरी की हो और पकड़े जाने के डर से भाग रहे हो। कहीं सच में तुम दोनों ने कोई चोरी। राघवेंद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वैदेही ने अपनी आवाज़ को हल्का भारी किया और जवाब देते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप दादा, आप ही तो सामने से जल्दी से चलकर आ रहे थे। हमने तो नहीं कहा कि आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो और आप भाग जा रहे हो। हम क्या आपको चोर नजर आते हैं, वैदेही ने थोड़ा जोर से बोलकर कहा, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उसी तरफ केंद्रित हो गया। राघवेंद्र को सब अच्छे से जानते थे, ऐसे में वो कुछ करता तो मामला बिगड़ सकता था। ऊपर से त्यागी जी भी उसके साथ थे। तुम दोनों को ये बहुत महंगा पड़ेगा, बप्पा से प्रार्थना करना कि कभी गलती से भी फिर से हमसे ना टकरा जाओ, राघवेंद्र ने वैदेही के पास आकर दबी आवाज में कहा। छोड़ो राघवेंद्र, लड़की गलती से टकरा गई होगी, त्यागी जी ने बीच में बोला। मामला ज्यादा बढ़ता इससे पहले देव और वैदेही ने वहां से जाना ठीक समझा। देव ने राघवेंद्र के सामने हाथ जोड़कर बोला, दादा मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, ये थोड़ी तीखे स्वभाव की है। तीखे स्वभाव की है तो संभाल के रख, राघवेंद्र ने कहा और त्यागी जी के साथ वहां से चला गया। देव और वैदेही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उन्होंने वहां ज्यादा कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वो दोनों जल्दी से वहां से निकल गए और वापस धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला में आते ही वैदेही ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां रखे पानी के जार से पानी निकालकर पीने लगी। थैंक गॉड उसने हमें नहीं पहचाना, देव सिर पकड़कर बोला, मुझे नहीं पता था कि उसका पूरा परिवार उस मेले में मौजूद होगा। पहले उसकी भाभी ने पहचान लिया तो फिर राघवेंद्र, हम अपनी टेंशन को भूलने के लिए घूमने गए थे लेकिन क्या पता था कि टेंशन और बढ़ जाएगी। एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई थी जब राघवेंद्र मुझसे टकराया था, लेकिन जब उसके मुंह से भाभी सुना तो एहसास हुआ कि उसने मुझे नहीं पहचाना। ऑल थैंक्स टू दिस लुक, बोलते हुए वैदेही ने खुद को वहां लगे आईने में देखा। उसका गेटअप हमेशा से बिल्कुल अलग था। जब वो राघवेंद्र के घर पर थी तो बिल्कुल सिंपल लुक में थी और यहाँ उसने हैवी कपड़ों के साथ काफी सारा मेकअप लगा रखा था जिसके साथ उसे जल्दी से पहचानना मुश्किल था। बस आज की बात है, उसके बाद तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ही जाएगी। आप थक गई होंगी वैदेही मैम, सो जाइए। वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी और कपड़े बदलने चली गई। दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर के शव को लेकर लल्लन और उसके आदमी राघवेंद्र की बताई हुई जगह पर आ चुके थे। उन्होंने वहां पर काम करने वाले बाकी लोगों को निकाल दिया। वहां सिर्फ लल्लन और एक दूसरा आदमी जीवन मौजूद थे। उनके साथ ऑटो ड्राइवर केशव भी था। क्या दादा, इसके चक्कर में आज की रात बर्बाद हो गई। सोचा था आज मेले का आखिरी दिन है तो घूम कर आएंगे, जीवन ने केशव की तरफ देखकर कहा, जिसे उन्होंने एक कुर्सी पर बांध रखा था। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग घूमने जा सकते हो। जैसे ही केशव ने जवाब दिया उसी के साथ वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बात तो सुनो ये साधु महात्मा की, लल्लन बोला, हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें, तुम तो पहले ही हमको धोखा देकर भाग चुके थे। वो तो हम तुमको पकड़ कर लाए और बोल रहे हो कि हम कहीं भागेंगे नहीं। उसकी बात सुनकर केशव ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन झुका ली। वो तो आप इसकी घरवाली को वादा कर दिए दादा, वरना कम से कम इसको मारपीट के टाइम पास तो कर लेते। एक के चक्कर में हम क्यों अपनी रात बर्बाद करें, हम घूमने जाएंगे, जरूर जाएंगे और मेले में मस्ती भी करके आएंगे, लल्लन ने कहा। लेकिन इसका क्या करेंगे दादा, हम इस पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते, कहीं पिछली बार की तरह फिर से भाग गया तो राघव दादा हमारी जान ही ले लेंगे। एक ही रखवाली के लिए हम किसी और को छोड़कर चले जाएंगे, पर किसको छोड़कर जाएं, सारे तो रात को टुन होकर पड़े रहते हैं, लल्लन अपने दिमाग पर जोर डालकर सोच रहा था। तभी उसे देव की याद आई और उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उसे फोन मिलाया। वैदेही कपड़े बदल कर आ चुकी थी और दोनों सोने जा ही रहे थे कि देव के मोबाइल पर लल्लन का फोन आया। हम बोल रहे हैं लल्लन भैया, देव के फोन उठाते ही लल्लन बोला, अभी के अभी काम करने वाली जगह पर पहुंच जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है। लेकिन भैया जी, देव ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि लल्लन ने फोन कट कर दिया। क्या हुआ, वैदेही ने पूछा। इस वक्त रात के 10 बजे काम करने की जगह पर बुला रहा है, कहीं उसने हमें पहचान तो नहीं लिया, देव ने चिंतित स्वर में कहा। आज राघवेंद्र ने तुम्हें पहली बार देखा था, जाहिर है कि वहां लल्लन मौजूद नहीं था तो वो तुम्हें कैसे पहचानेगा, लेकिन इस वक्त जाना भी सही नहीं होगा, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं वैदेही मैम, मैं अकेला ही जाऊंगा, अगर मामला थोड़ा भी गड़बड़ लगा तो मैं आपको उसी वक्त कॉल कर दूंगा, आप पुलिस लेकर पहुंच जाइएगा। वैदेही ने देव के साथ जाने की कोशिश की लेकिन वो जिद करके अकेला चला गया। उसके पीछे से वैदेही ने इमरजेंसी सिचुएशन में की जाने वाली तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद देव वहां पर पहुंचा। उसने देखा कि ठेके के बाहर लल्लन और एक और आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही लल्लन खुश होकर बोला, ई लो, हमारा नया चौकीदार आ गया है, कहीं ये राघव दादा को कुछ बता तो नहीं देगा, जीवन डरते हुए बोला। भैया जी, अभी इसे मिले ही कहाँ है जो ये जाकर कुछ बताएगा, बोलते हुए लल्लन देव की तरफ मुड़ा और कहा, हम कुछ देर के लिए घूमने जा रहे हैं, अंदर एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ है, तुम्हें उसकी रात भर चौकीदारी करनी है कि वो वहां से निकलकर भाग ना जाए। उनकी बात सुनकर देव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या आपने अंदर एक आदमी को किडनैप कर रखा है और मुझे उसकी पहरेदारी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, उसने पूछा। तो लल्लन ने उसकी तरफ घूर कर देखा, जितना बोला है उतना कर, वरना उसके साथ साथ तुझे भी बांध कर चले जाएंगे, फिर दोनों एक दूसरे की पहरेदारी करते रहना। लल्लन की धमकी सुनकर देव ने तुरंत हाँ कह दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। लल्लन और उस आदमी के जाते ही देव अंदर आया। अंदर आकर उसने देखा कि सामने ऑटो ड्राइवर बंधा हुआ था, तो वहीं ऑटो ड्राइवर ने भी उसे देखकर तुरंत पहचान लिया। तुम लोग तो वही हो जो उस रात मेरी टैक्सी में आए थे और तुम्हारी बीवी ने ही पुलिस बुलवाई थी, केशव उसको देखते ही चिल्लाया। हाँ तो क्या गलत किया था, गलत सही छोड़ो, तुम लोगों की वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन लोगों के सामने आने की, तुम्हें नहीं पता लेकिन इन्होंने तुम्हें ढूंढकर मारने का आदेश दिया है। केशव की बात सुनकर देव घबरा गया। केशव हंसते हुए बोला, अब तो तुम गए बेटा, तुम खुद मौत के मुंह में चलकर आए हो, अच्छा हुआ आ गए हो, अब हमारी आजादी का रास्ता तुमसे होकर ही गुजरेगा। केशव ने अपनी बात खत्म की और फिर जोर से चिल्लाकर लल्लन को बुलाने लगा, लल्लन भैया जल्दी आइए, ये लड़का वही है जो।
केशव ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि देव ने उसके मुंह पर कसके अपना हाथ रख दिया। वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब तुम्हारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, बेवजह चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कहकर उसने उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। अब चले गए हैं तो क्या हुआ, सुबह तो यहीं पर आएंगे ना, तब मैं उन्हें तुम्हारे और तुम्हारी घरवाली के बारे में सब कुछ बता दूंगा, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? तुम दोनों की वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है, जब से तुम दोनों मिले हो तब से मारा मारा फिर रहा हूं, ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। ऑटो ड्राइवर की बात से देव समझ चुका था कि वो लल्लन के आते ही उन दोनों की सच्चाइयों से बता देगा, उसके बाद राघवेंद्र और उसके आदमी उनकी जान ले लेंगे। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने बाहर आकर इधर उधर देखा, उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने जल्दी से वैदेही को कॉल किया। क्या हुआ देव, सब ठीक तो है ना? कॉल उठाते ही वैदेही जल्दी से बोली, पता नहीं वैदेही मैम, लेकिन यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। जिस ऑटो में हम उस रात यहाँ आए थे और रास्ते में हमें उस रिपोर्टर की लाश मिली थी, उसे राघवेंद्र और उसके आदमियों ने किडनैप कर रखा है। क्या? वैदेही ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? उसे लगता है कि हम दोनों की वजह से ही वहां पर पुलिस आई थी और रिपोर्टर की हत्या का मामला इतना उछला था, अब वो लोग हम दोनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। ऑटो ड्राइवर ने मुझे देखते ही पहचान लिया, अब जब सुबह लल्लन आएगा तो ये उसे सब कुछ बता देगा। देव ने एक सांस में सारी बात वैदेही को बता दी। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे ऑटो ड्राइवर को समझा बुझाकर रोक सके? नहीं मैम, ये खुद अपनी जान छुड़ाना चाहता है, जब तक ये उन्हें हमारे बारे में नहीं बताएगा तब तक वो लोग इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, देव ने परेशान होकर कहा। देव और वैदेही दोनों के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो गई थी। मैम, हमें यहां से चले जाना चाहिए, देव ने सुझाव दिया। तुम जानते हो देव, हम यहां से नहीं जा सकते, हमें अभी तक राघवेंद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और जो भी मिला है वो साबित करने के लिए यहां पर दो दिन और रुकना होगा। क्या आपको सच में लगता है कि अगर हम दो दिन रुके तो ये हमें जिंदा छोड़ देंगे? हम यहां से भागेंगे तब भी वो हमें पकड़ ही लेंगे, मुंबई से सेफ जगह हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती, जिंदा रहे तो इनके खिलाफ सबूत ढूंढते रहेंगे। देव की बात सुनकर वैदेही सोच में पड़ गई। अगले ही दिन रिपोर्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली थी, दोनों का यहां पर रुकना बहुत जरूरी था, लेकिन ऑटो ड्राइवर का उन दोनों का पहचान लेना उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, जिसके बाद यहां रुककर सिर्फ और सिर्फ मौत को दस्तक देने जैसा था।